श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री तुलसी महारानी की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 31 जुलाई के प्रभात जागृति में आप सबका स्वागत है। कार्यकाल बड़ा पवित्र है क्योंकि चतुर्मास्य चल रहा है और चतुर्मास्य भक्ति के प्रगति के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। जैसे दिन में ब्रह्म मुहूर्त अनुकूल होता है और 15 दिन में एकादशी का दिन अनुकूल होता है महीने में दो बार, और साल में 4 महीने भक्ति के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, वो है चतुर्मास्य। चतुर्मास्य में संतजन यात्रा करना बंद कर देते हैं और एक जगह रहते हैं और चतुर्मास्य का व्रत एक जगह निश्चित करके वो उसको पूर्ण करते हैं। तो चतुर्मास्य में हमारे बहुत सारे व्रत, वैकल्य, पूजा अर्चना, उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, नागपंचमी, कितने सारे, दीपावली, दशहरा, तुलसी विवाह, भीष्म पंचक, ऐसे अनंत अनेक एक के बाद उत्सव इस महीने में मनाए जाते हैं, इन महीनों में। तो इस 4 महीने के कालावधि में श्री महाभारत ग्रंथ पढ़ने का शास्त्रों में आदेश दिया गया है। धर्म शास्त्रों में चतुर्मास के काल में महाभारत का पठन और पारायण और श्रवण करने की बड़ी महिमा बताई गई है। सनातन धर्म में ऐसा कोई विषय नहीं है, पूरे सनातन धर्म में, जो महाभारत में जिसकी चर्चा न की गई हो। तो धर्मशास्त्र में जितने भी विषय हैं जो जरूरी है, वो सभी विषयों की चर्चा महाभारत में हुई है। महाभारत में एक षड अंग यानी 6 अंगों का धर्म का विवरण दिया गया है, इसको षष्टांग धर्म विवरण कहते हैं। तो षष्टांग धर्म विवरण के साथ 4 वेदों को अगर एक पराजो के पलड़े में डाला जाए, ब्रह्मा जी ने स्वयं षडांग 4 षडांग धर्मशास्त्र के साथ 4 वेदों को पलड़ो तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे में महाभारत रखा, तो ब्रह्मा जी को स्वयं पता चला कि महाभारत की गरिमा और महिमा उन सबसे ज़्यादा हुई। यानी कि षडांग धर्मशास्त्र और वेद 4 वेदों के सामने भी गरिमा यानी हाइट यानी ऊंची ऊंचा स्तर और महिमा यानी गौरव जो है वो महाभारत का ज़्यादा निकला। तो महाभारत को गौरव देखकर ब्रह्मा जी भी अचंभित हुए। आमतौर पे कहा जाता है कि महाभारत को घर पे रखना नहीं चाहिए, कितने लोगों ने सुना है इसे? सबसे बड़ा वहम है ये, सबसे बड़ा वहम। कृष्ण और अर्जुन का चित्रपट घर पे रखना नहीं चाहिए, रथ में बैठा हुआ। क्या सोचते हैं लोग कि घर में कलह होगा, घर में झगड़े होंगे? लेकिन कैसा देखो कलयुग का प्रभाव है, जो अर्थ है उसका उसका एग्जैक्टली उल्टा अर्थ जो है वो लोग प्रचलित कर देते हैं उसको। और महाभारत के महात्म्य में क्या लिखा है कि जिस घर में महाभारत का ग्रंथ केवल रखा रहता है उस घर में कभी भी कलह नहीं होता, और लोग प्रचार क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली उल्टा। जिस घर में कृष्ण का अर्जुन का चित्रपट होता है रथ में बैठा हुआ, अर्जुन सारथी, अर्जुन रथी है, कृष्ण भगवान सारथी बने हुए, वो चित्रपट देखने से परम भक्ति का घर में विकास होता है, क्योंकि एक भक्त और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, भगवान अपने भक्तों का कैसा दास भी बन सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं उसका प्रमाण दिखता है वहां पर। उसमें कोई झगड़ा कलह होने का कोई संबंध नहीं है उसके अंदर। जिस घर में महाभारत रखा रहता है उन लोगों के घर में हथेली पे हाथ पे विजय यात्रा करता है, हमेशा वो लोग विजयी रहते हैं और वो उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं केवल महाभारत ग्रंथ के घर में रखने से। और हम लोग तो केवल रखने का प्रयोजन रखते नहीं है, मैं उसको पढ़ना भी है, सुनना भी है, चर्चा भी करना है, आकलन भी करना है, मनन भी करना है और उसको स्वीकार भी करना है जीवन में व्यावहारिक रूप में। व्यास देव जी महाभारत के गौरव में एक श्लोक लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम उच्यते निरुक्तमश्चयो वेदम सर्व पापैः प्रमुच्यते। महाभारत इतना महान है कि उसके श्रवण करने से खास करके चतुर्मास के 4 महीने के कालावधि में सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्व पाप प्रमुच्यते, और उसकी महती और गरिमा प्रचंड है इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। महाभारत सर्वोपरि है, 18 पुराणों की सारी कथाएं महाभारत में दिखी गई है, जो आपको 18 पुराणों में कथा मिलती है सब महाभारत में मिलेगी आपको। विशेष करके गाय ब्राह्मण और संत की महिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए महाभारत ग्रंथ लिखा गया था। महाभारत ग्रंथ में जितनी गौ की महिमा है, जितनी ब्राह्मण की महिमा है, संत की महिमा है, वो किसी भी ग्रंथ में नहीं है। महाभारत, अभी देखो महाभारत किस चीज चीज में श्रेष्ठ है, महाभारत श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है, महाभारत श्रेष्ठ अर्थशास्त्र है, महाभारत श्रेष्ठ समाजशास्त्र है, श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र है, व्याकरण सबसे उच्च तरीके से महाभारत में सिखाया गया है, छंद शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, हर प्रकार के धर्म का वर्णन महाभारत में दिया गया है। अगर आपको समय बहुत कम है तो कहा गया है कि केवल भीष्मदेव ने जो युधिष्ठिर को शरशय्या पर विराजमान होने के पश्चात जो उपदेश किया है वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन में जो आवश्यक है वो सब प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि तो स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, राजधर्म, समाज धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सभी प्रकार के अनंत धर्मों का विवरण राजा युधिष्ठिर को भीष्मदेव ने अपने भीष्म पर्व में किया है, वो महाभारत का सार माना गया है। तो प्रतिवर्ष महाभारत की कथा चतुर्मास में सुनने का विधान दिया गया है, इसलिए हमने सोचा कि आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, क्योंकि जीवन में बहुत कष्ट होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, विवंचनाएं होती है, चिंताएं होती है, हमको उसका दुख भी होता है, कष्ट होता है उसका, और वो चतुर्मास में भी होता है। हाँ, लेकिन मैं भाई बहुत दिनों से, मतलब अभी नहीं, जब मैं उत्तरकाशी में था, उत्तरकाशी में अप्रैल में था, तभी से मैं महाभारत सुनते आ रहा हूँ, और विशेष रूप से जब मैं अभी सुन रहा हूँ चतुर्मास में, तो उसका मुझे विशेष, जैसे मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता वैसा लाभ हो रहा है, इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो आप लोग भी महाभारत का सुनना, कथा पढ़ना, चर्चा करना आरंभ कीजिए, बहुत ही शक्तिशाली है। तो महाभारत कितने श्लोकों के महाभारत के अंदर, किसी को कल्पना है, रफ आइडिया? हाँ, 4 लाख और 1 लाख और श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। ये तो सही, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं इसको पढ़ रहा था। महाभारत जो मूल लिखा गया उसका कथा ऐसी है कि गणेश जी को उसका काम दिया गया, आप हम कहेंगे आप लिखेंगे उसको, लेकिन गणेश जी तो बुद्धि देवता हैं, उनके पास इतनी बुद्धि है तो इतनी तेजी से लिखेंगे तो उनको अगला श्लोक रचना करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो व्यासदेव जी ने एक शर्त रखी कि आप, मैं जो श्लोक लिखूंगा ना उसको आप पहले समझेंगे, आपको समझ में आया तो ही उसको लिखेंगे आप। अभी गणेश जी की बुद्धि को समझने के लिए कितनी देर लगती है, फिर भी व्यासदेव जी इतने महान ऋषि हैं, इतने महान ऋषि हैं कि उन्होंने 8,800 इतने कूट श्लोक लिखे हैं उसके अंदर, ऐसे कूट श्लोक लिखे हैं कि जो जिसके पांच पांच अर्थ निकलते हैं एक एक श्लोक के, और कभी कभी दो अर्थ जो है एक के एकदम विपरीत होते हैं, आपको लग रहा है कुछ और उसका एकदम विपरीत आपको अर्थ नजर आएगा, और दोनों अर्थ सही है उसके। ऐसे उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रभुत्व के ऊपर बहुत ही कूट यानी कठिन समझने के लिए ऐसे श्लोक लिखे और अपने लिए समय निर्माण किया ताकि आगे का श्लोक वो रचना कर सके। तो जब महाभारत लिखा गया तो उसका स्थान कहाँ है लिखने का, कहाँ लिखा गया इसको? बद्रीनाथ धाम, हिमालय, हिमवान पर्वत के बीच में, सरस्वती नदी के किनारे, दो गुफा में बैठे, एक गुफा में व्यास देव जी बैठे, एक गुफा में गणेश जी बैठे। वैसे बहुत दूर है और वैसे पास में भी है, और यहाँ से वो बोल रहे हैं, वहाँ से वो श्रवण करके उसको लिख रहे हैं, ये स्थिति है। तो जब वो लिखा गया तो 60 लाख महाभारत के श्लोक लिखे गए हैं, 60 लाख्स, और उसमें से इसको मूल ग्रंथ कहते हैं, जो मूल ग्रंथ लिखा गया व्यास देव जी के द्वारा वो 60 लाख श्लोकों का है। उसमें से 30 लाख श्लोक जो है वो देवलोक को दिए गए और श्री नारद मुनि देवताओं को वो 30 लाख श्लोकों वाला महाभारत सुनाते हैं। 15 लाख श्लोक जो है वो पितृलोक को दिए गए और असित और देवल, आप भगवद्गीता पढ़ेंगे तो इनका वर्णन आता है, असित और देवल व्यास, तो असित और देवल मुनि जो है वो पितृलोक में 15 लाख श्लोकों वाला महाभारत सुनाते हैं। फिर 14 लाख जो है महाभारत, वो 14 लाख वाला महाभारत सुखदेव जी महाराज, हमारे भागवतकार सुखदेव जी महाराज गंधर्व और राक्षसों को सुनाते हैं गंधर्व लोकों में। अभी कितने बचे? तो आपका उत्तर सही था, वो केवल 1 ही लाख पृथ्वी पर अवेलेबल है, और वो वैशंपायन जी महाराज ने, वैशंपायन जी सुखदेव अपना व्यासदेव जी के शिष्य हैं, प्रमुख शिष्यों में से हैं, और उन्होंने उनको भागवत सिखाया है, अपना महाभारत सिखाया है। और जन्मेजय के यज्ञ में, जब जन्मेजय ने यज्ञ किया था ना, उनके पिताजी का सर्प दंश द्वारा जो विधि विधान लिखा गया था उसके द्वारा क्रोधित होकर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, महासर्प यज्ञ, सारी सर्प योनि को नष्ट करने के लिए। तो सर्प यज्ञ में कथा होनी चाहिए, ऐसे कहते हैं कि ये भी बहुत अचंभित बात है, कोई भी यज्ञ करेंगे आप तो कहते हैं यज्ञ की सफलता के लिए, पूर्ण होने के लिए, संपन्न होने के लिए एक छोटी सी क्यों ना हो महाभारत की कथा उसमें कहनी चाहिए। तो व्यासदेव जी ने इस महात्म्य को जानते हुए स्वयं अपने शिष्य वैशंपायन जी को आदेश दिया है और जन्मेजय के यज्ञ में वैशंपायन जी ने 1 लाख श्लोक वाला महाभारत जो है उसका पूरा कथन किया है। इस तरह से वैशंपायन जी के माध्यम से हमें ये महाभारत यज्ञ ग्रंथ जो है वो अवेलेबल है 1 लाख श्लोकों वाला। वे भागवत जी 18,000 श्लोक है, उसको पढ़ने को कई साल लगते हैं, तो 1 लाख श्लोकों का पढ़ने का विधान 4 महीने में दिया गया है, चतुर्मास के आरंभ में ज्येष्ठ आषाढ़ पूर्णिमा या आषाढ़ का एकादशी शुरू करके कार्तिक एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा तक उसको समाप्त करना है, ऐसा विधान दिया गया है। तो वैसा तो कई घंटों तक कहने जैसा महाभारत का महात्म्य है, लेकिन संक्षेप में हमने आपको महाभारत का महात्म्य बताया ताकि एक भूमिका निर्माण हो जिससे आपका श्रवण यंत्र जो है वो तैयार हो इस अमृत को ग्रहण करने के लिए। तो इसमें से जो मैंने कथा सुनी है वो सुनकर मुझे रोमांच हुआ, और एक बार नहीं अनेकों बार मैंने बार बार ये कथा सुनी, हर बार मुझे रोमांच हुआ, इतना आनंद हुआ। तो उसने मुझे कहा, मुझे लगा कि ये कहानी आप सब लोगों को बतानी चाहिए, और चतुर्मासी में इसका बताने का अवसर आया, इसलिए मैं भगवान का बड़ा आभारी हूँ और आपका भी आभारी हूँ। तो एक समय पर कुछ चोर चोरी करते हैं और चोरी कर अपना चोरी का सामान लेकर मांडव्य ऋषि के कुटी में आकर छुप जाते हैं। तो यथावकाश राजा के जो सैनिक है वो आते हैं ढूंढते ढूंढते और उन चोरों को अपने चोरी किए हुए सामान के साथ पकड़ लेते हैं और मांडव्य मुनि को भी पकड़ के ले जाते हैं, क्या समझकर कि ये भी चोर है लेकिन साधु का भेष बनाकर नाटक करने के लिए बैठा हुआ है दिशा भूल करने के लिए, तो उसको भी उठा के ले जाते हैं। राजा को खबर कर देते हैं कि चोरी पकड़ गए हैं, चोरी का माल भी पकड़ा गया है। तो राजा बिना देखे ही निर्णय लेता है सबको सूली पर चढ़ा दो, ऐसे बिना देखे ही महाभारत में और कौन सी घटना हुई थी बहुत भयंकर? कुंती देवी ने सुना कि माता आज हम एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए, तो माता बिना देखे कहते कि हर रोज की तरह सब लोग बांट लो। थोड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था, कृष्ण को आकर उसको समझाना पड़ा कि उसका इतिहास क्या है, ये ऐसे ही कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है। तो वैसे ही राजा ने बिना देखे ही सबको सोली पर चढ़ाने का आदेश दिया। सैनिक लोग जो इसको क्या कहते हैं अमल में लाने वाले हैं, उनको पता नहीं मांडव ऋषि कौन है, उन्होंने सबको सोली पर चढ़ा दिया और सब लोग मर गए। और मांडव ऋषि इतने इतने महान ऋषि थे कि वो सूली के अग्रस्थान पर जाकर बैठकर आसन जमा कर ध्यान करने लगे। अब मैं आपको बताता हूँ सूली का मतलब क्या होता है। सूली का मतलब ऐसे बहुत भयंकर डंडा होता है, उसके अंदर बहुत लंबा एक नोकदार भाला होता है, चारों तरफ से शार्प होता है वो, ऊपर से आदमी को लटकाते हैं और छोड़ देते हैं उसको, तो गुदा स्थान में वो घुस जाता है और सीधे गले से बाहर निकलता है, मतलब पूरा अंदर से फाड़ कर, हृदय को फाड़ कर, सर को फाड़ कर ऐसे बाहर निकलता है। अभी अभी तक शिवाजी महाराज अगर औरंगजेब के समय तक ये सूली पे चढ़ाने का जो दंड है वो दिया जाता था। हमारे जाने जना भाई के जीवन में भी सूली पर चढ़ाने का निर्देश दिया गया था राजा की ओर, तो वो सूली के ऊपर ही वो बैठ गए अग्रस्थान पर और आसन जमा कर ध्यान करने लगे और 6 महीने वो वहां पर बैठे और ध्यान किया। तब जाकर राजा को खबर पहुंची कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूली पर ही बैठ गया है और उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, तो भाग भाग के आते देखते, अरे मांडव ऋषि कितने बड़ा अपराध किया मैंने, तो कहते इनको उतारा जाए। लेकिन तब तक वो सूली उनके शरीर में इस तरह बैठ गई थी कि उनको सूली से अलग करना नामुमकिन हो गया था। तो क्या हो गया, सो सूली को काटना पड़ा जितना उनके शरीर में फंस गया था। और वो उसको कहते हैं अणी, अणी यानी द टॉप, सबसे जो शिखर का हिस्सा होता है, वो उनके गुदा में ही रह गया, तो उनका नाम पड़ा अणी मांडव्य। जिनके गुदा में अणी बैठ गई है निकल नहीं सकती है। तो ये तपोधन महर्षि सीधे सदेह जिस शरीर में है उस शरीर से यमलोक के पास गए सीधे, इतने शक्तिशाली है ये। और यमराज को प्रश्न किया, बताओ यमराज ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था? क्योंकि क्या हुआ ना, जब वो बने बैठे थे ना तभी बहुत सारे ऋषि मुनि पक्षी बनकर आए और उनको राजा को खबर किया और उनको भी बताया कि क्यों ऐसे आपको कष्ट हो रहा है। तो वो सीधे यमराज के पास गए और पूछा कि क्या ऐसा मैंने गुनाह किया था जिसका आपने ऐसा भयंकर 6 महीने तक दंड दिया मुझे? और कहते हैं कि एक श्लोक है, उसका मतलब है कि वो आप मुझे बताओ पहले, फिर मुझे मेरे तपोबल की मतलब तपोबल का जो महिमा है वो आपको दिखा दूंगा बाद में मैं, पश्चमे तपोबल, आप बताओ पहले फिर बाद में मेरा बल कितना मैं आपको बताता हूँ। तो यमराज भी डर गए, क्योंकि यमराज भी बहुत भगवान के महान भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, वो भी संतों का अपराध नहीं करना चाहते, वो भी हो संत तो नाराज है, क्रुद्ध हैं। तो चित्रगुप्त को बोलते हैं जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखा है तुमने, तो कहते हैं कि पतिंगी का नाम पुच्छेसु त्वये शिका प्रवेशिता, बालक समय में आपने एक बार पतंग होता है ना वो जो ज्वाला पर जाकर अपनी जान दे देता है, क्या कहते हैं उसको, पतंग, परवाना कहते हैं उसको कविता के भाषा में उर्दू में, तो वो पतंग के पार्श्व भाग में आपने सुई घुसाई थी बचपन में। तो और उनको क्रोध आया सुनकर, अरे बाल्यकाल में क्या समझ में आता है, कोई पाप बुद्धि से तो नहीं किया था उसको? लेकिन वो कहते हैं विद्या विधि विधान तो ऐसा ही है, जो लिखा गया है वो मैं कह रहा हूँ, मेरे हाथ से मैंने घटना नहीं बनाई गई है, मुझे जो दी गई है ब्रह्मा द्वारा उसको मैं पालन कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि आप तो बड़े उच्च पद पर बैठे हो और वहां पर बैठ के कानून बनाते रहते हो, आपको पता नहीं भौतिक जगत में कलयुग भौतिक जगत में रहते हुए पृथ्वी पर रहते हुए बिना पाप के जीवन जीना कितना कठिन है, कैसे पदम पदम यत विपदम नते शाम यहां पर होते रहता है। तो यमराज को ना हिंट मिल गया, क्या हिंट मिल गया, कि आपको पता नहीं है पृथ्वी पर रहते हुए पाप को ना करते हुए जीना कितना मुश्किल है, मतलब मुझे पृथ्वी पर भेजने वाले हैं अभी तुरंत। तो कहते महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूं। तो उस समय ऐसा वर्णन आया है कि मांडव्य अणी मांडव्य ऋषि ने उस समय भगवान के द्वारा बनाए गए जो कायदा प्रणाली थी उसको बदल दिया। उन्होंने कहा आज से मैं ऐलान करता हूं, श्लोक है भागवत महाभारत में, कि 14 साल तक बालक ने किए गए किसी भी गुने को या दंड किसी भी गलत कार्य को, पाप कर्म तथा कथित पाप कर्म को कोई दंड न दिया जाए और उसका दंड जो है उनके माता पिता को दिया जाए। ये उन्होंने मतलब कितनी शक्ति होगी उनकी, देखो यमराज जिस कानून को पालन करते हैं उसमें उन्होंने बदल कर दिया। तभी इस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है लेकिन समय कम है हमारे पास। तो एक पतंग के पार्श्व भाग में सुई को प्रवेशित करने के लिए उनको ये दंड भोगना पड़ा और वो दंड देने के वजह से यमराज को पृथ्वी पर आना पड़ा। तो यमराज ने पहले से बता दिया, महाराज जी मैं समझ चुका हूं कि आप मुझे पृथ्वी पर भेजने का शाप दे रहे हैं, लेकिन मुझे 3 चीज नहीं बनना है, मुझे राजा नहीं बनना है, क्योंकि राजा जो है राजधर्म का पालन करते करते उसका इतना जटिल धर्म होता है, राजधर्म इतना जटिल होता है कि राजधर्म को पालन करते करते कितनी गलतियां हो जाती है, तो मुझे राजा नहीं बनना है। दूसरा, मुझे दासी पुत्र नहीं बनना है, क्योंकि दास को स्वामी की आज्ञा पालन करते हुए कई बार धर्म विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आज्ञा तो पालन करनी है, वो धर्म के अनुकूल हो न हो उसको उसका निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है, राजा जो बोलेगा वो करना पड़ता है और दास के हाथ से कई बार अपराध होते हैं। और मुझे चांडालत्व नहीं स्वीकार करना है, मुझे चांडाल नहीं बनना है, ये 3 मुझे चीज नहीं होना है। तो अणिमांडव ऋषि कहते हैं आपको राजा, दासी पुत्र और चांडाल ही बनना है, क्योंकि वो नाराज थे ना उस समय, वो देख रहे कि जिसे मुझे दंड देना है वो उसको ये नहीं बनना है तो मुझे वो ही देना है उसको, ही वॉज वेरी एंग्री। तो इस तरह से यमराज जी को 3 जन्म प्राप्त हुए, वो एक वो युधिष्ठिर महाराज बने स्वयं, दूसरे वो विदुर बने दासी पुत्र, और तीसरे वो एक वाल्मीकि नाम के ऋषि बने, जो वो वाल्मीकि नहीं है जो आदि आदि कवि महर्षि रामायणकार वाल्मीकि, तो त्रेता युग में हुए, ये द्वापर युग के वाल्मीकि, वो भी स्वयं स्वपच्छ यानी चांडाल कुल में उनका जन्म हुआ था। तो महाभारतकार व्यासदेव जी लिखते हैं कि जैसे बालक काल में अनजाने में क्या कहते हैं निष्पाप भावना से मांडव्य ऋषि ने एक पतंग के पार्श्वभाव में सुई घुसाई थी, तो हमें उपदेश दिया गया उसमें कि किसी भी जीव को कभी भी बिना मतलब कष्ट देना नहीं चाहिए, और हम किसी भी जीव को बिना मतलब के कष्ट देते हैं तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे आप कितने महान पुरुष क्यों न हो। तो फिर अणिमांडव जी ने घटना दुरुस्ती की और फिर वो पृथ्वी पर चले गए। अब ये जो वाल्मीकि है इनकी कथा बहुत रोचक है। महाभारत में कई पर्व हैं, उसमें एक जैमिनी अश्वमेध पर्व है, बहुत सुंदर सुंदर पर्व है, एक एक पर्व की कथाएं जो है इतनी उद्बोधक हैं, इतनी हमारे लिए कल्याणकारी है उसका श्रवण करना। तो ये जब घटना हुई, जब श्राप मिला यमराज जी को, तो उसके तुरंत बाद जैमिनी, तुरंत बाद वाल्मीकि कथा नहीं आती है, लेकिन वो जैमिनी अश्वमेध पर्व में आती है। तो इनका क्या है कि युधिष्ठिर महाराज ने कई यज्ञ किए, युधिष्ठिर महाराज का इतना गौरव है कि उन्होंने अपने परम कल्याणकारी स्वभाव, भजन भक्ति और गुणों के आधार पर विश्व कल्याण के लिए बहुत यज्ञ किए। उनका राजसूय यज्ञ तो बहुत मशहूर है जिसमें शिशुपाल जी का वध हुआ था, लेकिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए, और एक अश्वमेध यज्ञ में जब यज्ञ हो रहा था तो कृष्ण के और पांडवों के परिवार में जितने लोग थे, जितने देशों में थे, वो सब लोग आ गए थे, जैसे कि उलूपी, रुक्मिणी, सत्यभामा, सब जगह से पति पत्नी उस यज्ञ में विराजमान थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जैसे महान महर्षि संत, राजऋषि संत जो है वो यज्ञ करने जा रहे हैं, तो उनका ऐसा इवेंट ना कोई साधु उसको टालना चाहता है, ना कोई गृहस्थ टालना चाहता है। तो युधिष्ठिर के उस अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने अपना पांचजन्य यज्ञ वहां पर शंख वहां पर ना रख दिया था, स्थापित कर दिया था, और युधिष्ठिर को कहा था कि जब आपका यज्ञ विधिवत संपन्न होगा तब ये बजेगा, ध्वनि करेगा, नाद करेगा, और जब ये सतत नाद करेगा इसका मतलब आपका यज्ञ सफल हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़े ही इत्मीनान से विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया, और यज्ञ संपन्न होने के बाद स्नात भी हो गया, यानी कि स्नान भी किया उन्होंने, यज्ञ उपरांत का स्नान, लेकिन शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण को प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हुआ, हमने तो पूरे यथोचित ऋषि मुनि के पौरोहित्य में पूर्णता विधिवत अच्छी भावना से सर्वसूची को रखते हुए इस यज्ञ को संपन्न किया है, तो क्या कारण है उसका कि यज्ञ में शंख नहीं बजा और परिपूर्ति कैसे नहीं हुई। तो भगवान ने उनको उत्तर दिया कि आपके यज्ञ के उत्सव में किसी निरअहंकारी साधु ने भोजन नहीं किया है, जिसको बिल्कुल अहंकार नहीं है ऐसे व्यक्ति ने भोजन नहीं किया। तो युधिष्ठिर महाराज ये सुनकर हंस पड़े, उन्होंने कहा कि भगवान अहंकार के बिना तो शरीर ही नहीं होगा, अहंकार है मतलब मैं की भावना है इसलिए शरीर है, और ये शरीर है तो भौतिक दुनिया में है, तो यहां पर जितने भी लोग हैं वो कैसे अहंकार से मुक्त होंगे, इस संसार में अहंकार रहित जीव कहां मिल सकता है। लोक लोकांतर यानी अनेक लोगों में ढूंढेंगे फिर भी एकाध मिलना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसमें बहुत सुंदर विवरण महाभारत में दिया गया है, वो ऐसा है कि सभी विकार अपने अंदर होते ना, जैसे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, उसमें अहंकार भी आता है, प्राइड मद को कह सकते हैं एक प्रकार से अहंकार। वो कहते हैं सारे विकार जो हैं तब तक निंदनीय होते हैं जब तक वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, भौतिक दुनिया में जुड़े होते हैं, भौतिक दुनिया के विषयों में जुड़े होते हैं। जैसे अगर काम भावना स्त्री में जुड़ी होगी दुनिया के, तब वो बंधनकारक है, निंदनीय है। लेकिन वो अगर काम भावना कृष्ण के साथ जोड़ दिया आपने, आपकी जो अटैचमेंट है वो कृष्ण के साथ जोड़ दी, तो वो साधना का ही साधन बन जाता है, उपासना बन जाता है वो। तो जब तक इन विकारों का संबंध संसार से है तब तक वो हमारे लिए बंधनीय बंधनकारक है, कष्टकारक है, पतनकारक है। लेकिन वही संबंध जब भगवान से कर देते हैं इन विकारों का, तो ये एक साधना का अंग बन जाता है। अभी महाभारत में भी एक श्लोक है, कामात गोप्यात भयात कमसह द्वेषात चैद्य दयो नृपा, ऐसा लंबा श्लोक है, लेकिन सारांश इसका यह है कि जो काम था गोपियों के अंदर उन्होंने वो कृष्ण में निहित कर दिया, जो भय था कंस में वो कंस ने कृष्ण में निहित कर दिया, इसी से प्यूरिफाई हो गया वो, बार बार भय के कारण निरंतर कृष्ण का स्मरण करता रहा। हो सकता है प्रतिकूल स्मरण किया हो लेकिन वो स्मरण का लाभ उसको मिला। और यहां तक महाभारत ने वर्णन दिया है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि द्वेषात चेदी, यानी चेदी राज कौन था, शिशुपाल, उसने अपना द्वेष कृष्ण में लगाया तो भी उसको लाभ हुआ, ऐसे महाभारत में वर्णन दिया है। और हमारे जो आचार्य हैं नरोत्तमदास ठाकुर, उन्होंने भी इसका सुंदर वर्णन दिया है अपने भजन में, काम कृष्ण कामार्पणी, अपने काम को कृष्ण के अर्पण करना चाहिए, जैसे गोपियों ने अपने काम को कृष्ण के लिए अर्पण किया था और अपने काम को ही शुद्ध कर दिया था। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध अगर हमको आता है तो उसका उपयोग कहां करना चाहिए, जो भक्तों का द्वेष करते हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए क्रोध का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने आज से सबसे भयंकर क्रोध प्रकट किया है, लेकिन वो रावण भक्त द्वेषी भगवान देशी उसको दंड देने के लिए किया है। नरसिंह भगवान ने सबसे भयंकर क्रोध प्रकट किया है, वो भाई भक्त द्वेषी के लिए किया है, भक्त को कष्ट देने वाले हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने क्रोध प्रकट किया है। लोभ साधु संगे, ऐसे कहा कि लोभ ही ऐसी बहुत विचित्र वस्तु है कि वो हमको सबसे गहन नरक में फेंक सकती है, लेकिन वो लोग अगर साधु संघ के लिए हो तो, कीर्तन करने के लिए हो तो, कीर्तन में नाचने के लिए हो तो, नाम जप के लिए हो तो, धाम में यात्रा करने के लिए हो तो, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए हो तो, ये कई प्रकार की चीजों में आपको लोभ हो सकता है। और जैसे ही आपने लोभ को यहां पर स्थानांतरित कर दिया, वो लोभ आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। तो लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभा भी नहीं, अगर हमारे इष्ट जो भगवान है उनके प्रति हमको मोह होता है तो हमें वो बचाएगा। मद कृष्ण गुणगाने, अगर आपको क्या कहते हैं ना, शराब पी के जो आदमी जाता है ना, तो वो मद धुंध कहते हैं उसको, मतलब वो कैसे व्यवहार करेगा, कैसे चलेगा, क्या पहन के चलेगा, क्या नहीं पहन के चलेगा, कैसी बात करेगा, कोई उसका ठिकाना नहीं होता, इतना उसको कहते हैं मद्य धुंध। तो एक वस्तु है मद, यानी कि जिस इस व्यक्ति के अहंकार में हम चूर रहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को अपने बल का मद रहता है, किसी व्यक्ति को अपनी बुद्धि का मद रहता है, किसी को अपना ज्ञान का मद रहता है, इज इंटॉक्सिकेटेड विथ नॉलेज पोजिशन पावर अथॉरिटी वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो मद की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है शरीर प्राप्त करने के बाद, उसको कहते हैं कृष्ण के गुणगान में लगाना चाहिए। अगर हम कृष्ण के गुणगान में मैड हो गए, पूरे इंटॉक्सिकेट हो गए, तो सबसे वो प्रार्थनीय स्थिति है, वी लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन। नियुक्त कोरिबे यथा यथा, नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि ऐसे अपने अपने विकारों को नियुक्त कीजिए, अपॉइंट कीजिए एक एक जगह पर, उनको ऐसे स्वैर मत छोड़िए, स्वैराचार करने के लिए, विषयों के पीछे पागल होने के लिए मत छोड़ दीजिए उनको। अपने अपने विकारों को समझ बूझ कर इन वस्तुओं में निहित कीजिए, इनका स्थापना कीजिए, तब अपना सारे विकार होते हुए भी हम लोग परम भाव भगवान के चरणों में पहुंचाएंगे। इस तरह से यहां पर वो अहंकार रहित व्यक्ति को कैसे प्राप्त करना नामुमकिन है, ऐसी चर्चा भगवान और युधिष्ठिर में हो रही है। तो भगवान युधिष्ठिर को बताते हैं लोक लोकांतर में ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे नगर में रहता ही है। तो तुरंत वो एकदम उत्सुक हो गए कि अगर सबको इतना भोजन जिमाया है तो इसको भी जिमाना चाहिए। तो उन्होंने वहां कहाँ है बताइए, तो भगवान ने वर्णन किया, पता बताया कहां पर है। बोले वो स्वपच है, चांडाल कुलोत्पन्न है, लेकिन ऐसा परम भक्त है मेरा कि वो चांडाल है, इस भावना से मत जाना उधर, आप बड़े नम्र होकर जाना। उसका नाम वाल्मीकि है और भीम अर्जुन को कहा आप दोनों चले जाओ और उनको लेके आओ। जब भीम और अर्जुन उसके कुटी में चले गए तो क्या दर्शन देखा उन्होंने, वो तुलसी के पौधे का जो वन है उसने बनाया था। तो तुलसी यहाँ पर एक रखी है, समझो मेरे चारों ओर ऐसे 50 चुल्की रखी जाए, तो ऐसे तुलसी के वन के बीच में वो भजन कर रहे हैं कृष्ण नाम का, और पूरे शरीर में गोबर लगाया उसने, गोमय लगाया है, तो पूरे शरीर में गोमय धारण करके तुलसी वृंदावन के बीच में बैठकर भजन कर रहे हैं, और ऐसा भजन कर रहे हैं कि आंखों से नदियां बह रही है अविरत, और उस नदियों से उस भूमि का सिंचन हो रहा है। वो दृश्य देखकर भीम अर्जुन बड़े ही गदगद हो गए भावना से, और वहीं दंडवत प्रणाम किया उन्होंने उनको। और वो वातावरण इतना दिव्य था कि वातावरण में उसका उनका वाल्मीकि देवी देव का जन्म दर्शन करते ही प्रेम भाव से कृष्ण के प्रति अर्जुन और भीम भी गदगद हो गए। उनका महाराज जी दंडवत प्रणाम, हम आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं, महाराज युधिष्ठिर के भाई हैं, उनके अश्वमेध यज्ञ में आपको भोजन कराने के लिए आए हैं। तो वो इतने क्या कहते हैं ना उसको, संकोच होता है उनको, क्यों कहते हैं कि आपका अश्वमेध यज्ञ में रोज मैं वहां पर जाकर कुछ बचा कुचा जो संतों का गिरा हुआ है वो मैं खाकर आता था, तो मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है कि आप मुझे आसन पे बिठाएंगे, सब लोग जिमाएंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कृष्ण का आदेश है, हमारा भी नम्र विनती है, आपको आना होगा। तो बड़े ही संकोच के साथ में भक्तों की विनती को न टालने की भावना से वो फिर गए। ठीक है, यहां पर कृष्ण ने क्या कहा, रुक्मिणी को बताया, द्रौपदी को बताया, उलूपु के बताया, ऐसे सत्य मामा को बताया कि ऐसे महान अहंकार रहित संत जो है आज यहां पर भोजन करने आने वाले हैं, आप सब लोग अपने अपनी पाक कला का परिपूर्णता के लिए आज भोजन बनाओ। तो ये चार पांच लोगों को बताया, तो उन्होंने और कोई लोगों को बताया, तो कुंती देवी और सब लोग आ गए, और सब लोगों ने अपने अपने तरफ से सबसे श्रेष्ठ व्यंजन बनाए, जो उनको सबसे बेस्ट बनाने के आते कि आज अगर ऐसे अहंकार रहित वाल्मीकि देव को भोजन कराएंगे तो यज्ञ तो संपन्न होगा ही, लेकिन हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो सब लोगों ने कई अभी देखो, कोई कुशल अगर कोई रसोई करने वाली औरत है तो उसको कोई 10-5 आदमी व्यंजन नहीं आते, तो कम से कम 50-60-70 तो आते ही है एक्सपर्ट। वो तो हम रुक्मिणी और द्रौपदी की बात कर रहे हैं, वो तो उनका क्या कहना, उन्होंने कई सैकड़ों व्यंजन बनाए हर एक व्यक्ति ने, और सब लाकर रख दिए उनके सामने। तो वाल्मीकि देव ने कहा कि अरे मैं तो इतना कैसे पाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कहते हैं कि क्या करें फिर, बोला एक 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 थाली ले आओ, थोड़ी गहरी सी जो होता ना, मतलब वो जो होता ना कमंडल टाइप होता है ना, थोड़ा सा गहरा सा ऐसा, और जो भी देना है थोड़ा थोड़ा डाल दो उसके अंदर। तो सब रानियां सोच रही है अरे कुछ तो मीठा है, कुछ तो नमकीन है, कुछ तो खट्टा है, कुछ तो कड़वा है, कुछ तो लिक्विड है, कुछ सॉलिड है, कुछ क्या क्या है अभी उसमें, मालपुआ भी है उसमें, रसगुल्ला भी है उसमें, रसगुल्ला है उसमें, रसमलाई है उसमें, सब्जी है उसमें, पेय है उसमें, पीयूष है उसमें, क्या क्या नहीं है अभी वो कह रहे हैं तो डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा उसमें, सब सब मिक्स कर लेते हैं और सब अभी अभी आप सोचो, आप अभी माताएं बैठे यहाँ पर, अगर आपने 10 आइटम का एक विशेष भोज बनाया है तो आप चाहेंगे ना कि उसको अलग अलग। मुझे अभी याद है अभी भी जब मैं नया नया भक्त बनाता ना तो मैं 2 प्लेट प्रसाद दिया करता था, 2 प्लेट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की इच्छा रहती थी, लेकिन वो प्लेट में अगर उस मात्रा में आइटम लेंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे तो फिर भोजन करने में उतना आनंद नहीं आएगा, इसलिए मैं वही आइटम 2 प्लेट में डिवाइड करके अच्छी मात्रा में लेकर एक जगह बैठता था और प्रेम से उसको पाता था। तो इनको ऐसे लग रहा था कि ऐसे करना चाहिए, तो ये सब सब मिक्स कर दिया, मीठा नमकीन कड़वा सब मिक्स कर दिया और आंखों में आंसू लेकर उसका भोजन किया उन्होंने। जैसे ही उन्होंने भोजन किया क्या हुआ, शंख ने नाद किया, लेकिन शंख ने नाद करते ही तुरंत वो शंख बंद हो गया। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने वापस कृष्ण की ओर देखा कितनी अच्छी बात है ना, एक्चुअली देखो आप कितनी अच्छी बात है कि जो भी कुछ है उनको पूछना कृष्ण को ही है। हाँ, हमको भी ऐसा ही होना चाहिए और कहीं जाना ही नहीं चाहिए, 10 जगह जाकर इंक्वायरी करनी नहीं चाहिए अनुकूल उत्तर प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर कृष्ण को ही पूछ रहे हैं। शंख मोर मौन हो गया, द्रौपदी ने पूछा, क्योंकि द्रौपदी तो राज पत्नी है ना, वो युधिष्ठिर महाराज यजमान है यज्ञ के, उनकी पत्नी तो शी इज अ मेन कुक, तो वही प्रश्न करती है कि क्या कमी रह गई। तो कृष्ण ने कहा कुछ ना कुछ अभाव रह गया है, दोष रह गया है। अभी एक होता है भाव जो हम लेके आते हैं, और अभाव के 2 अर्थ होते हैं, बताइए कौन से अर्थ है। अभाव का मतलब क्या होता है, कमी, कमी, त्रुटि, डेफिशिएंसी, उसको अभाव कहते हैं। और एक अभाव का अर्थ है अभाव, जो गलत भाव है। तो भगवान यहां पर दोनों बता रहे हैं कि अभाव हो गया और अभाव हो गया, यानी कुछ कमी भी रह गई और भाव में भी त्रुटि हो गई। तो व्यंजन में कोई त्रुटि नहीं है, सब कुछ तो बढ़िया बनाया है, तो त्रुटि किसमें हो सकती है, भाव में ही हो सकती है। तो भगवान ने द्रौपदी को कहा तुम्हारे मन को स्वच्छ करो, क्या सोचा तुमने जब बनाते समय, बनाते समय तो बहुत प्रेम से बनाया, जिमाते समय क्या सोचा। तो कहते हैं कि मैं आपको सत्य बताती हूं, मैं सोच रही थी कि अगर ये हर व्यंजन को अलग अलग पाते, हर एक व्यंजन की तारीफ करते, कुछ चीज बहुत अच्छी लगी तो दोबारा मांगते, और बहुत सारा मुंह होने के बाद में कहते कि अभी थोड़ा मुंह स्वच्छ करने, चटनी थोड़ा सा मुखवास दे दो, थोड़ा पापड़ दे दो, अचार दे दो, चटनी दे दो, तो हमें बहुत अच्छा लगता और हमारे जो मेहनत हमने की भाव से बनाया उस भाव को भी एक अच्छा प्रतिसाद मिल जाता, परिपूर्णता हो जाती। लेकिन हमारे मन में ऐसा विचार आया कि है तो शूद्र ही ना, अपने वर्ण का दोष तो रहेगा ही उसके अंदर, और दोष तो है ही, तो हमने उसको परोसा। लेकिन परोसते समय जब वो देख पा रहे थे उसको, तब हमने सोचा कि ये तो चांडाल जन्म में, चांडाल कुल में जन्म हुआ इसका, तो उस कुल की जो आदतें हैं वो भी इनके अंदर है। हमने हमने जो जो भी बनाया सारे श्रम को इन्होंने व्यर्थ कर दिया। भक्त तो बहुत ऊंचे हैं लेकिन है तो चांडाल ही ना, ऐसे विचार से हमने उनको जमाया। इनका वर्णगत स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है, कितने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। देखो वर्णगत स्वभाव हर एक व्यक्ति में होता है। हाँ, ब्राह्मण को अपना वर्णगत स्वभाव होता है कि आशीर्वाद देना, क्षत्रियो को वर्णगत स्वभाव क्या होता है, दंड देना, शासन करना, उसका एक स्वभाव होता है। वैश्य का वर्णगत स्वभाव क्या होता है, जहां जाए वहां बिजनेस करना, उनको सब जगह पैसा ही दिखाई पड़ता है कि यहां पैसा है, यहां कमा सकते हैं। और शूद्र का वर्णगत स्वभाव क्या होता है, सबकी सेवा करना। और उसके नीचे 3, शूद्र के आगे 3 है, कौन से है वो, पहले यवन जो मांस खाते हैं, और बाद में म्लेच्छ जो मांस खाते हैं, और सूअर का मांस भी खाते हैं उसको यवन के बाद में म्लेच्छ कहते हैं। और चांडाल सूअर भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, और कुत्ते का मांस भी खाते हैं, उसको चांडाल कहते हैं, स्वपच ऐसे वर्णन किया। तो यहां पर उपदेश किया गया है बहुत सुंदर कि किसी भी वैष्णव को कभी भी जातिवाचक, वर्णवाचक, आश्रमवाचक, सरनेमवाचक, हाँ, गांववाचक निंदा नहीं करनी चाहिए। और हमारी ऐसी आदत है, हम लोग कहते हैं ना दैट ब्लैक अमेरिकन डिवोटी, ऐसे हमारे हमेशा हम लोग दैट व्हाइट बॉडीड फॉरेन बॉडीड डिवोटी, या तो वो जो है ना, वो छोटी सी, वो जिसका नाक ठीक नहीं है, इस तरह से हम वर्णन करते हैं। इस प्रकार के जाति सूचक, वर्ण सूचक, शरीर के व्यंग सूचक तरीके से कभी भी किसका निर्देश नहीं करना चाहिए। और अगर वो वैष्णव होगा तो हमें बहुत बड़ा भयंकर अपराध लगेगा। यहां तो इनका इतना भयंकर, इतने सुंदर, इतने भव्य अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति का प्रश्न है, पूर्ति नहीं हो रही है। इतने सारा व्यंजन, इतने सारे व्यवस्था करने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर का, चक्रवर्ती सम्राट का अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्णवाचक वर्ण सूचक विधान किए गए यहां पर। तो ऐसे शब्दों से वैष्णवों का तिरस्कार करना अक्षम्य अपराध कहा गया है, महाभारत में लिखा है। तो एक सुंदर श्लोक है भागवत में इसके प्रति, अहो बतह स्वपचो तो गरियान या जिह्वाग्रे वर्तनी नाम तुभ्यम। बहुत फेमस श्लोक है भागवत में। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो वैष्णव बन जाता है उसका पूर्वेतिहास पूछना नहीं चाहिए। वो किस कुल से है, किस जन्म से है, कोई परिवार से है, कौन सी भाषा बोलता है, गरीब है, अमीर है, सुंदर है, कुरूप है, किसी प्रकार का इस प्रकार का वर्णन वैष्णवों को लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि वैष्णव जैसे ही वैष्णव बनते हैं, कोई व्यक्ति जैसे ही क्या कहा है, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, आपका भगवान का नाम जो जिसकी जिह्वा को सुशोभित कर चुका है, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम सतत उच्चारण होता है, ऐसे व्यक्ति की कभी भी जाति कुल पूछना नहीं चाहिए। वो उसी समय जब से वो जात भगवान का नाम अपनी जिह्वा से उच्चारण करना आरंभ करते हैं, उसी समय वो जाति वर्ण के और आश्रम से परे चले जाते हैं। आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये किस कुल का है। और हरे कृष्णा, तो ऐसे भक्तों का वर्णन का क्या किया गया है, जैसे कि माँ भगवान रामचंद्र जब जंगल में गए, जब वनवास शुरू किया, तो किसको मिले, वो वन में किसको मिले, निषाद राज गुहा को मिले। निषाद राज जो है वो जो प्राणी को मारकर अपने जीवित चरितार्थ चलाता है उसको चांडाल कहा गया है। तो निषाद राज तो वैसे ही जंगल में रहने वाले राजा थे, स्वपच थे वो, एक प्रकार के चांडाल थे। लेकिन ऐसे कहा गया है कि क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने गुहा को अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया और गले लगाया, इसलिए जो ब्रह्मा जैसे हैं, प्रति ब्रह्मा है, द्वितीय ब्रह्मा है वशिष्ठ मुनि, वो स्वयं ब्राह्मण है, उन्होंने भी राजा निषाद को गले लगाया। फिर रामायण में वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि जिस समय शबरी को मिलने का समय आया, मेरे ख्याल से वो कबंध राक्षस को जब उसका वध किया गया, जो एक आंख वाला था, वो लंबी भुजा वाला था, उसको मारकर जब भी भगवान ने उसका वध किया, तो वध होना मरने के पहले उसने कहा कि मैं भाग्य है कि आपके हाथ से मेरा वध हुआ, मेरे लिए यही उच्छाप था कि मैं इस शाप से मुक्त हो जाऊं, आपने मुझे मारा तो मैं मुक्त हो गया। तो उसने दिव्य रूप दिखाया अपना और भगवान को कहा कि मुझे आपको ये भी बताने का आदेश है कि आगे आपको किसको मिलना है। तो वो शबरी को मिलने का उनको निर्देश देते हैं। तो उस समय शबरी कौन थी, शबर कुलोत्पन्ना थी वो। शबर यानी कि जंगली भिल्ल लोग होते हैं ना, वो भी सुपज जैसे ही होते हैं, चांडाल जैसे ही रहते हैं, और बाण मारकर किसी भी जीव को मार देते हैं, उसको खा लेते हैं। तो कुत्ता वत्ता तो को जो बाण के अंदर आएगा वो सबको खा लेते थे। वो ऐसे कुल में शबरी का जन्म हुआ था। तो वो जो भगवान को निर्देश दे रहे हैं, भगवान तो सामान्य पुरुष सामान्य मानव का रोल अदा कर रहे हैं, तो भगवान भी सुन रहे हैं। तो उनको क्या उपदेश किया गया, श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छते ति राघव। हे राघव, आप जब शबरी के पास जाएंगे तो कृपा करके ये सोचकर मत जाना कि वो शबरी है, शबर कुल की उत्पन्नता, चांडाल कुल में उत्पन्न हुई भिल्ल औरत है। वो श्रमणाम यानी श्रवण, उसकी श्रवण इंद्रिय जो है वो भगवान के विषय में श्रवण करके अत्यंत पुनीत हो गए हैं। वो अत्यंत धर्मपरायण है, वो निवृत्त धर्म में परायण है, यानी कि जो उसने जीवन में 5 साल में जो घर से भाग गई थी तब से उसने किसी प्रकार का भोग लिया ही नहीं आयुष जीवन भर में। जैसे हमारे गदाधर पंडित के बारे में कहा था, गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के समय आए थे, उनका ऐसा गौरव आता है महा चैतन्य चरितामृत में कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भोग लिया ही नहीं किस चीज का, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसे ये व्यक्ति लड़की 5 साल की उम्र में बकरियों की हत्याओं को देखते हुए अपने घर में भाग गई थी, फिर संतों की सेवा करके संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया कि भगवान के दर्शन होंगे, और उस उम्र से 5 साल की उम्र से आज की उम्र तक, कम से कम कहते हैं कि 80 साल तक उसने किसी भी चीज का भोग नहीं किया है, केवल भगवान आएंगे इसी चिंतन में उसने अपना पूरा यौवन, बाल्यकाल, मध्यमकाल, वृद्धकाल, अतिवृद्धकाल तक उन्होंने, अंधे होने तक भी उन्होंने वही एक व्रत का पालन किया था। ऐसी वो महान भक्ता है, धर्म परायण है, निवृत्ति धर्म की परायणा है। इसलिए हे भगवान, हे राघव, श्रद्धा और नम्रता से सुशोभित होकर शबरी को मिलने जाना, ऐसे भगवान को भी कहा गया है जब वो मानव का एक रोल अदा कर रहे हैं। आप सोचिए, इसमें भक्ति की महिमा का वर्णन है कि भक्ति जब कोई करता है तो वो कैसे धर्म, आश्रम, वर्ण, जाति सबके परे होकर एक ऐसे उच्च स्तर पर पहुंच जाता है जो भगवान भी उसकी वंदना करते हैं। यहां तक कि भगवान ने उसके मुंह का जूठा भोजन किया, बेर खाए, लक्ष्मण जी को अच्छा लगा नहीं, फिर भी चुप करा के सारे बेर जितने खिलाने थे उसको वो सब खाए उसने। तो संत लोग यहां पर वर्णन करते हैं, नीच की व्याख्या करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, नीच वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन नहीं करता, सॉरी टू से, लेकिन संत लोग यहां पर बता रहे हैं कि नीच एक ही व्यक्ति को कह सकते हैं, जाति से, धर्म से, वो आचरण से, नीच वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन नहीं करता। उसको उसके जीवत शव समान कहा गया है, वो जीवंत होने पर भी वो शव के समान मुर्दा डोल रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो फिर द्रौपदी की मति शुद्ध हो गई और पांचजन्य शंख ने सतत रूप से शंखनाद किया। उसके बाद में भगवान ने कहा कि आप अभी द्रौपदी को कहा, अभी उनको ही पूछो कि उन्होंने सब मिलकर क्यों खाया। उनके मन में अभी भी प्रश्न है ना, ये ठीक है, मेरा तो मैंने भाव शुद्ध कर लिया, मेरा जो वर्ण भेदी भाव था वो उसको मैंने शुद्ध कर दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो बोले तुम ही जाके पूछो उनसे। तो द्रौपदी गई वाल्मीकि सपज के पास और उन्होंने कहा कि आपका क्या कारण है। तो उन्होंने एक श्लोक बताया उनको, सब लोग ध्यान से सुनिए, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दना। ये जैमिनी अश्वमेध पर्व में श्लोक आता है, उसमें कह रहे हैं कि अन्न जो है, जो हम भोजन कर रहे हैं वही भोग्य, मतलब जो भोग लेने लायक है, वो भोग्य वस्तु जो अन्न है वही ब्रह्म है, और रस विष्णु है, रसो विष्णु हो, और उसको पाने वाले, उसका भोग लेने वाले, उसका आनंद लेने वाले वो भोक्ता जनार्दन, वही विष्णु है। तो हमारे लिए क्या है, हम क्या है इसके अंदर, ना भोक्ता है, ना रस पान करने वाले हैं, ना निर्माण करने वाले हैं, कुछ भी नहीं है हम। वो अन्न के जो भाग हैं, वो एक शारीरिक भाग होता है, फिजिकल पार्ट होता है, एक रस होता है और एक भोग होता है उसका। हाँ, ये तीनों विष्णु है, तो हमें तो केवल प्रसाद पाना है। तो बहुत सुंदर बात बताते, हमें तो केवल कृष्ण के अधरामृत को पाना है, जो कृष्ण ने उसको भोजन करते समय अपना अधरामृत उसमें छोड़ा है, उसका स्वाद हमको लेना है। और अगर हम अभी देखो, ये स्वपच बता रहे हैं, मतलब वाल्मीकि देव बता रहे हैं द्रौपदी को कि अगर हम प्रसाद के अंदर भी अगर स्वाद का भाव लेकर प्रसाद लेते हैं कि ये खिचड़ी है, ये इतनी अच्छी नहीं है, ये पुलाव है, ये सेजवान राइस है, ये खीर है, ये मालपुआ है, रबड़ी है, ये बटाटा वड़ा है, इस भाव से अगर हम प्रसाद खाते हैं, तो यहाँ पर वाल्मीकि देव कह रहे हैं कि स्वाद के भेद भाव के भाव से, यानी व्यंजन में जो भेद है ना कि ये मीठा है, ये नमकीन है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय नहीं है, ये करेला है, ये मुझे अच्छा लगता नहीं है, मुझे गवार अच्छी लगती नहीं है, मुझे वो अच्छा लगता है, इस भाव से जब हम प्रसाद पाते हैं तो कहते हैं ऐसे भाव से प्रसाद पाने वाले व्यक्ति का भजन और साधना नष्ट हो जाती है। बहुत सुंदर उपदेश है उसके अंदर ये। तो प्रसाद पाना, भगवान के नाम का जप करना, चार नियम के पालन करना, भगवान के विषय में सुनना या पढ़ना, सत्संग करना, तीर्थ में जाकर दर्शन करना, ये बहुत वैसे सिंपल बातें हैं, लेकिन इसके अंदर गहराई और गहराई और अति गहराई और अति गहराई उपलब्ध है। और हम लोग सब लोग प्रसाद पाते हैं, शायद यात्रा में साल में एक बार आता है, दिन में तीन बार दो बार प्रसाद तो पाते ही है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम केवल कृष्ण के अधरामृत को पाने के लिए खाएं और स्वाद के भेदभाव से न खाएं तो हमारा कल्याण हो सकता है, और स्वाद के भेदभाव से खाएंगे तो हमारा भजन, हमारी साधना नष्ट हो सकती है। और फिर उन्होंने वर्णन किया कि स्वाद जो है अन्न का, प्रसाद का, वो भी एक नश्वर वस्तु है। कितना सुंदर समझाया है कि स्वाद जो है वो कहां होता है, बताइए, स्वाद का अनुभव कहां होता है? अभी आपने जीवा बताया, सही बताया, तो जीवा में, पूरी जीवा में होता है। आप मेडिकल बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं यहां पर, केवल जीवाग्र पे स्वाद का अनुभूति होती है। हाँ, जब आपको कड़ी भी गोली दी जाती है तो आप क्या करते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं, उसको पीछे रखते हैं और पी जाते हैं, ताकि कड़वाहट का स्वाद ना हो, क्योंकि पीछे स्वाद नहीं होता है, थोड़ा बहुत कड़वाहट का स्वाद पीछे होता है, लेकिन अधिकतर भोजन का स्वाद जिह्वा के अग्रभाग में होता है। और वो अग्रभाग में स्वाद होता है जब आप उसको लेते हो और चबाते हो और उस जलेबी को वापस निकालते हो जो आपने चबा दिया है लाल रस के साथ में, तो वो क्या अट्रैक्टिव होता है? नहीं होता है। आप ही उसको ग्रहण नहीं करेंगे अगर आपने उसको मुंह से निकाल दिया, उस जलेबी को ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपने उसको अच्छी तरह चर्वण करके उसको गले में डाल दिया और फिर वो बाहर निकल गया वमन के माध्यम से, तो आप उसको ग्रहण कर सकते हो। और अगर वो आगे चला गया तो उसको बाहर निकाल कर आप शांति पाएंगे, इज इट नॉट ट्रू? और जब तक वो कब्ज के रूप में अंदर रहता है, वो जलेबी है लेकिन कब्ज के रूप में अंदर है, तो आप गोली लेकर उसका उपाय करते हैं। तो वो बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि अन्न का स्वाद, भाई चाहे वो प्रसाद भी हो, वो भी कुछ समय तक रहता है, उसके बाद में वो गले के बाद में उसका कोई आपको स्वाद नहीं आता है, कोई अनुभव नहीं होता है उसका। और ज्यादा खा लिया तो उदर भरण का जो दुख है वो भी होता है। अगर आपने बहुत श्रेष्ठ व्यंजन आपके पसंद का आपकी कैपेसिटी के आगे खा लिया तो आपको कष्ट होगा, रोग होगा, पीड़ा होगी, उसका आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि जिसका आनंद केवल जीवाग्र पर होता है उसके लिए हमको इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें केवल कृष्ण के अधरामृत का ही ध्यान करते हुए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अभी इसके बाद में वाल्मीकि जो थे महान भक्त, वो कहने लगे कि अभी मेरा गौरव जो है ना, वो अभी प्रकाशित हो गया ना, अभी, अब तक तो मैं अकेला था, अच्छी तरह अपना भजन कर रहा था, लेकिन अभी जैसे वो हमारे थे माधवेंद्रपुरी, वो जब पता चला कि खीरा चोरा गोपीनाथ, गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चोरी किया, तो वो प्रसिद्धि के भय से भाग गए वहां से, कि अभी प्रसिद्धि होगी तो 50 लोग मिलने आएंगे, उसमें सब लोग आएंगे, कामी आएंगे, क्रोधी आएंगे, लोभी आएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, तो हमारा भजन तो नष्ट हो गया। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी वहां से चले गए थे। उसी प्रकार से ये अभी उसी जगह बैठकर कह रहे हैं कि अभी मेरी जो भक्ति है वो प्रकाशित हो गई, अभी मेरे लिए जीवन आसान नहीं होगा, अभी मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं। उसी समय भगवान को प्रेम से निहारते हुए, प्रेमाश्रयों को बहाते हुए स्वपच ने अपना शरीर त्याग दिया वाल्मीकि ने, और अपना सारा तेज जो था वो राजा युधिष्ठिर में स्थापित कर दिया, और वो सबके आंखों के सामने उसी सभा में, अश्वमेध यज्ञ की सभा में, वो भगवत धाम चले गए। तो ऐसे ये वाल्मीकि भक्त का गौरव यहां पर बताया गया है, सबके आंखों के सामने वो अंतर्धान हो गए। तो यमराज तीन रूप में प्रकट हो गए, एक वाल्मीकि के रूप में, उसके मैंने कथा बताई, विदुर जी दूसरे, और तीसरे युधिष्ठिर महाराज। इसमें महाभारत के अंत में यह भी लिखा है कि विदुर जी ने भी अपना तेज जो है वो युधिष्ठिर महाराज में स्थानांतरित करके वो भी पधार गए उच्च लोगों की ओर। तो विदुर जी, ऐसे कहा गया महाभारत में कि वैशंपायन जी ने बहुत सारे संतों का जन्मों का वर्णन किया है, जैसे शकुंतला के जन्म का वर्णन किया है, फिर पांडु के जन्म का, फिर धृतराष्ट्र के जन्म का, चित्रवीर्य चित्रांगद का जन्म का वर्णन किया है, कहते हैं कि लेकिन इन सारे वर्णनों की कथा में वो रुके, ज़्यादा रुके नहीं है, लेकिन सबसे अधिक वो विदुर के जन्म कथा पर रुके। और उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि पूरे महाभारत के काल में विदुर जैसा महात्मा कोई नहीं था, और उन्होंने एक श्लोक लिखा है उसके अंदर, उसको कहते हैं एक श्लोकी विदुर महात्म्य और एक श्लोकी विदुर चरित्र। तो वो ये है, वैशंपायन जी कह रहे हैं, वैशंपायन उवाच, धर्मे च अर्थे च कुशलो लोभ क्रोध विवर्जितः दीर्घदर्शी शमपरः करु करुणां चहिते रतः। संक्षेप में कह रहा हूं आपको कि धर्म और अर्थशास्त्र में निपुण विदुर से अधिक कोई महान व्यक्ति उस समय उपलब्ध नहीं था। क्रोध और लोभ से वे सदा विवर्जित थे, कभी भी क्रोध लोभ का उन पर परिणाम नहीं हुआ। और एक शब्द उपयोग किया गया है शमपरः, हाँ, दो प्रकार के दमन मतलब कंट्रोल को कहा गया है, एक है शम और एक दम। किसी को पता है इसका डिफरेंस क्या है? जब हम बाहर इंद्रियों को जैसे कि हाथ पैर जिह्वा कान इनको नियंत्रण करते हैं तो उसको दमन कहते हैं, दम। और अंतर इंद्रिय जो हैं मन बुद्धि अहंकार इनको नियंत्रण करने को शम कहते हैं। तो भगवद्गीता में श्लोक क्या है? शमो दमस तपश्चर्य। हाँ, शम और दम दोनों का वर्णन किया गया है। लेकिन जब कोई शम को सफल करता है तो दम अपने आप हो जाता है। जो अंतर इंद्रियों पर काबू कर पाता है वो बाहर इंद्रियों पर अपने आप ही काबू प्राप्त करता है। तो शम समपरहा, ये वेदुर जी का वर्णन किया गया है, समपरहा, ये इनका अंतर इंद्रिय हमेशा नियंत्रित थे। कभी भी वो उन्होंने ऐसा एक वाक्य नहीं कहा जो नहीं कहना चाहिए था। विदुर की दीर्घदर्शिता, आगे आगे वर्णन आया है ना कि दीर्घदर्शी समपरहा, इनकी दीर्घदर्शिता इतनी महान थी कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी समय जो सृष्टि में अशुभ दर्शन हुए थे, जो भी अशुभ घटनाएं से उल्काएं गिर रही थी, भूकंप हो रहा था, तूफान आ रहे थे, चक्रीवादल आ रहा था, क्या कहते हैं उसको, कौवे चिल्ला रहे थे, औल यानी कि वो क्या थे, उल्लू उल्लू चिल्ला रहे थे, कुत्ते आकाश की ओर देखकर चिल्ला रहे थे, इस प्रकार के बहुत अशुभ चिन्ह प्रकट हुए, जैसे हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप के जन्म भी हुए थे। उस समय ही विदुर ने कहा था कि ये व्यक्ति कुल घातक है, इसका अभी भी त्याग कर दो, अभी इसको नष्ट कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे सारे कुल को, तुमको ही नहीं तुम्हारे सारे कुल को नष्ट कर देगा। अगर वो उस समय धृतराष्ट्र अपने भाई की ये बात सुन लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो इनकी दीर्घदर्शिता का वैशंपायन जी वर्णन करते हैं कि बहुत लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए जो हुआ वो हुआ। आगे जाकर विदुर जी जब पांडु को मार्गदर्शन कर रहे थे, जब पांडु राजा बने, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पांडु को राजा बनाया गया, तो विदुर की मार्गदर्शन के वजह से हस्तिनापुर के राज्य में इतनी सुबत्ता थी, इतनी धर्मपरायणता थी कि लोग कह रहे थे कि मानो दुष्यंत जो महान राजा थे, महाभारत के इतिहास के प्रमुख राजा थे, वो जिनके नाम से राज्य धर्म जाना जाता है, उनके पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष को नाम दिया गया है, ऐसे महान ऋषि पांडु के रूप में जन्म लिए हैं, ऐसे लोग कहते थे। लेकिन उसका कारण था कि विदुर का मार्गदर्शन पांडु को प्राप्त था। तो तीनों लोकों में विदुर के अलावा धर्मपरायण तत्वदर्शी महापुरुष उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे सुंदर कथा महाभारत में आई तो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। इसमें कई सारे बोध हैं, प्रसाद के विषय में है, हमारे मन के भाव के विषय में है, कैसे भजन नष्ट होता है उसके विषय में है, सत्संग के विषय में है, हर चीज़। महाभारत की जितनी कथाएं हैं उसका निर्माण ही इसलिए किया गया है कि जो भागवत जैसे शास्त्र हैं उसको आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए व्यासदेव ने महाभारत रामायण का निर्माण किया कि कथा रूप में जब किसी उपदेश को किया जाता है, कथा के बीच में उपदेश को पेरा जाता है तो उपदेश को समझना आसान हो जाता है। से रामायण महाभारत की दिव्य कथाओं के माध्यम से व्यावहारिक रूप में मनुष्य को कैसे धर्मपरायण होना है उसका सुंदर वर्णन महाभारत में दिया गया है। महाभारत की कोई कथा ऐसे नहीं इसमें हमारे लिए बोध नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, पुरुष स्त्री बालक वृद्ध किसी प्रकार के वर्ण के लोग नहीं है, आश्रम के लोग नहीं है, और धन के अनुकूल जिनकी स्तर है, ऐसे हर प्रकार के व्यक्ति के लिए महाभारत की कथाओं में निहित उपदेश उपलब्ध है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहता हूँ मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया। किसी का कोई प्रश्न है? यस रोज। तीन जन्म उनको दिए गए थे। तीनों एक ही साथ थे, उपलब्ध थे एक ही समय पर, तीनों रूप में यमराज प्रकट हुए। जैसे एक ही रूप में बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में भी थे, विश्वरूप के रूप में भी थे, और भी एक रूप था उनका, तीन रूप में एक साथ में थे। तो ऐसे होता है, अर्जुन भी ऐसे आए हुए हैं एक ही समय पर, बहुत लोग ऐसे आते हैं। भगवान के जो विष्णु तत्व हैं या भगवान के भक्त हैं वो उनकी इच्छा से, महाजन जो है वो भगवान की इच्छा से कई रूप में एक साथ प्रकट हो सकते हैं, ये उनकी दिव्यता है। यस प्रभु जी।
आपने बताया कि प्रसाद में स्वाद नहीं देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई
है आदर्श स्थिति यह है कि प्रसाद का गुणगान करते हुए खाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए निहित आदेश यह है कि उसका उस प्रति उस स्वाद के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए कि मुझे गुलाब जाम प्रसाद अच्छा लगता है। जैसे ही महाप्र प्रसाद का प्लेट हमारे पास आता है ना मंदिर में, वो सब लेके आते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए, तो हम बोलते हैं ये चाहिए, तो वो चाहिए वो चाहिए, तो उस प्रकार से उस व्यंजन के साथ आसक्त नहीं होना चाहिए, नंबर वन। और चैतन्य चरितार्थ में इसका आदेश भी दिया गया है कि वो प्रसाद जो था, समझो फॉर एग्जाम्पल वो यही शाक का कृष्ण आस्वादी लो, ये कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय शाक था, केले के फूल का शाक, तो वो मैं जब ग्रहण करता हूँ, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं उसको ग्रहण करते ही अपने जीवन को धन्य समझता हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया हुआ शाक है वो जब मैं पाता हूँ तो मैं जीवन को धन्य समझता हूँ। तो वो स्वाक के स्वाद से आसक्त वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो शाक का गौरव कर रहे हैं और जो मुझे प्राप्त हुआ इसलिए उसका गौरव, लेकिन उसके लिए स्वाद के लिए आकर्षित नहीं है, वो आसक्त नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, शास्त्र में आदर्श आदेश से दिया गया है कि महाप्रसाद सड़ा भी होगा हुआ हुआ तो भी उसको भक्ति और आदर के साथ में ग्रहण करना चाहिए, लेकिन दूसरों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी श्रद्धा जिस प्रकार की है अगर वो खाएगा तो उसका अपराध करेगा, इसलिए वो दूसरों को नहीं देना चाहिए। लेकिन हमको अगर उसको प्राप्त होता है, सामने से आ जाता है, तो उसका कर्ण मात्र क्यों ना हो उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का बहिरंग जो है वो खराब हो सकता है प्रकृति के नियम के अनुसार, लेकिन उसके अंदर निहित कृपा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। चूहा भी अगर खा लेता है उसको सड़ा हुआ, या चींटी भी खा लेती है तो उसको भी उसका दिव्य लाभ होता है, लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो हमको ये ऐसे समझना चाहिए कि अरे क्या प्रसाद है, तो वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य स्वरूप में है, सब लोग को खाना चाहिए, ऐसे दूसरों के लिए आदेश हमको देना नहीं चाहिए। लेकिन स्वयं के लिए कर्ण मात्र क्यों ना, अगर आप बीमार हो, आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो आप ज़्यादा नहीं खाओ, थोड़ा सा खाओ, लेकिन आदर जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण हैं जो बहिर्रूप से प्रकृति के गुणों के प्रभाव से ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ में प्रकट हो रहे हैं उसके अंदर। वो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में भाव बहुत जरूरी है। जहाँ भाव की जगह अभाव हो जाता है तो अभाव का परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है, अभाव के परिणाम से कोई मुक्त नहीं है, सब लोग अभाव का परिणाम भोगते हैं, भोगना पड़ता है। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी। महाभारत गीता प्रेस के जो महाभारत है वो बहुत बोनाफाइड है, उसमें सब श्लोक दिए गए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस्कॉन के अंदर बहुत सारे महाभारत हैं वो कथा रूप में लिखे गए हैं, श्लोक नहीं उसके अंदर, कथा रूप में लिखे हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी कथा हो वो सही लेखक या सही प्रवचनकार के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी व्यावसायिक के मुंह से ये कथा सुनते हैं जो अन्य हेतु की वजह से कथा करते हैं, उनके भाव का परिणाम आपके भाव पर होगा। अगर वो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, धन के इच्छा से करते हैं, तो उनके मुख के द्वारा जब भागवत या कथा कोई सुनते हैं आप, तो उनका भाव भी आपको प्रभावित करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत हो या कोई भगवान की कथा हो, भगवान के संबंधित भगवान के भक्तों की कथा हो, वो सब प्रामाणिक भक्त के मुख से ही श्रवण करना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।